dessa zona terrestre. Deus são os pintores, Deus são os carros. O Supremo está no cartão e a cara माता पिता को कारागार से छुड़ाने के बाद और उग्रसेन महाराज को राजा बनाने के बाद वसुदेव जी अपने पुत्रों का वीर संस्कार कराए, अपने पुरोहित द्वारा और ब्राह्मण द्वारा वीर संस्कृतों ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों को वीर कहा जाता है। क्योंकि ये दो बार जन्म लेते हैं, एक बार माता पिता के गर्भ से, माँ के गर्भ से, और दूसरी बार गुरु के द्वारा जन्म कराया जाता है। यथावत ज्ञान लेकर के भगवान के बारे में और समस्त नियमों में शिष्य को लगाता है गुरु, इसलिए यह गुरु के द्वारा दूसरा जन्म है। अन्यथा प्रथम जन्म से सभी शुद्ध होते हैं। वीर संस्कृति जरूरी है, संस्कार वीर संस्कार का ब्राह्मण संस्कार भी नहीं होता। ब्राह्मण बनाना, क्षत्रिय बनाना और शुद्ध यानी वैश्य बनाना, इसको वीर संस्कार कहते हैं। कृष्ण द्वारा हम वीर संस्कार प्राप्त किए, इसके द्वारा दुर्योधन पुरोहित के द्वारा और अन्य ग्राहकों के द्वारा इस अवसर पर श्री वसुदेव जी ने बहुत दान दिया ग्राहकों को। दक्षिणा गाव बहुत सुगम जन्म दिए, सभी गांवों का पूर्ण श्रृंगार हुआ था, वे सोने की मालाएं पहने थे, रूप माला सुनम करता अच्छे अच्छे वस्त्रों से उनको सजाया गया था, उनको चित्रकारी की गई थी और सोने की मालाएं पहनाई गई गौओं को। और जिन ब्राह्मणों को दान दिया रहे थे वे ब्राह्मण भी आमंत्रित थे। वे भी अच्छा अच्छा वस्त्र पहन करके और तिलक आदि से सुशोभित थे। गायों का दान किया गया तो गौएं सब बछड़ों के साथ थे। दोनों के बच्चे भी दान दिए गए। अर्थ है कि दुधारू गौएं दान देंगे। भोग मार्ग में गायों को बहुत सुंदर वस्त्र ओढ़ाए गए थे, रेशमी वस्त्र। और रत्नों की माला तो पहनी ही थी, उसके साथ पुष्प की माला पहनी थी। भगवान कृष्ण के जन्म के समय और श्री बलराम के जन्म की बात सुनकर, कृष्ण का जन्म देख कर और बलराम जी के जन्म की बात सुन करके दुष्देव जी ने मन में संकल्प किया था जितनी गायें देने का तो सभी गायें दान दी। जिन गायों का कंस अपहरण कर लिया था, पहले से पता था कि शायद समस्त जादों का धन छीन लिया था, गाय वगैरह भी, तो दुष्देव जी की गायों का अपहरण किया था। जहाँ गाय थे वहाँ से अपने झुंड में मिलवा लिया कंस। वसुदेव जी एक भी गाय दान नहीं कर पाए। जिन गायों को दान देने का संकल्प किए थे उन गायों को और अन्य सभी गायों को वंश जबरदस्ती अपने झुंड में मिला लिया था। जो उस समय उन्होंने संकल्प किया था गाय दान देने का, मनोदत्त का महामती महान मति वाले वसुदेव जी उसे गाय याद करके और आज दान दिए। कृष्ण के जन्म के समय जो संकल्प किए थे वो गाय दान दिए, 10,000 गाय दान देने का संकल्प किए। और बलराम के जन्म पर भी संकल्प किए, उस समय दान कर नहीं सकते थे। यह भी बात थी कि कंस गायों को छीन लिया था और कारागृह में थे, अपना गाय दान देने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन फिर भी इतना मन में उत्साह था, मन में संकल्प कर लिए कि गाय दान करनी है। महामती कहकर के सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उनका मन बहुत बड़ा था। भगवान के अवतार से उनको काफी प्रसन्नता थी, मन में दान कर दिए। आज बीज संस्कार के समय उन सारी गौओं को प्राप्त करके दान दिए। जिन गौओं को देने का संकल्प किए थे वही गौएं पूर्ण रूप से मिल गई। कंस की मृत्यु के बाद सभी गाय पुनः वसुदेव जी की हो गई। या कृष्ण राम जन्म से मनोदत्ता महामती पाश्चात अनुस्मृत्या कंसेना अधर्म को होता है। कंस के द्वारा अधर्म से जो गौ अपहृत हो गई थी उन समस्त गौों को दिए। कोई भक्त यदि कृष्ण को देना चाहता है और शक्ति नहीं होती है देने की, तो भगवान व्यवस्था करवा देते हैं। भक्त को ऐसी स्थिति में कम देते हैं कि वो दान दे पाए। वो शेर भी दान देने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन भगवान ने उनको सक्षम बना दिया। कंस का वध किया और अपने पिता के सारे धन को लौटा दिया गौड़े सहित। ऐसी शिक्षा मिलती है कि भगवत सेवा का संकल्प करना चाहिए, भगवान पूरा करते हैं। यदि सच्चा संकल्प है तो पूरा करेंगे। भक्त में शक्ति देंगे तो कर सकेगा भगवान की सेवा। पर सेवा करने की लालसा होनी चाहिए। भगवान सेवा की भावना से संतुष्ट होकर उसकी सेवा की लालसा पूरी करते हैं। मध्य संस्कारों के यत्न प्राप्त सिद्ध हो गर्गा चुक लाचार ज्ञातम घटना। उसके बाद भगवान विकल्प को प्राप्त किए। और बहुत से नियम धारण किए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन शुरू किया। किसी स्त्री से बात करना इत्यादि उन्होंने कभी नहीं किया। ब्रज में तो वो स्वतंत्र थे, कोई नियम नहीं था। कहीं भी किसी स्त्री से बात चालू कर देते थे, बात ही नहीं होगी, नाचने लगते थे, गीत गाते थे। यह सब ब्रह्मचर्य जीवन में नहीं चलता। लेकिन अब सुसंस्कृत हो गए, ब्रह्मचारी बन चल गए और अपने कुल के आचार गर्गाचार्य से गायत्रम व्रत मास्टर। गायत्रम व्रत का अर्थ है ब्रह्मचर्य व्रत और वेद पढ़ना। ब्रह्मचर्य के दो अर्थ हैं। ब्रह्मचर्य एक अर्थ है कि ब्रह्म माने भगवान। ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए जो नियम धारण किया जाता है उसको ब्रह्मचर्य व्रत कहते हैं। और दूसरा ब्रह्म तप है तपस्या। शरीर की चरम शक्ति रक्षा करना, शरीर में उसको उर्जादी बनाना, इसको ब्रह्मचर्य व्रत कहते हैं। दोनों दृष्टि से दोनों भाई इस व्रत को धारण किए। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके और अब गुरुकुल में रहने की इच्छा की है। पढ़ने की इच्छा किए, गुरुकुल वास की इच्छा किए और वेद पढ़ने की इच्छा किए। ऐसे दोनों सर्व विद्या नाम प्रभोद्यव प्रभावों जितनी विद्याएं हैं वेद शास्त्रों में कही गई है समस्त विद्या के सर्वोत्तर कृष्ण बलराम प्रभो सर्व विद्या नाम सर्वज्ञ जगदीश्वर श्री कृष्ण बलराम समस्त विद्या के प्रवर्तक हैं सर्वज्ञ हैं और जगत के ईश्वर हैं। इनको कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये कुछ याद करेंगे तब इनको स्मरण आएगी। विद्या स्वतः सिद्ध विद्या है। इस संसार में तो कई साल पढ़ने के बाद एक छोटी सी विद्या व्यक्ति सीख पाता है, चार वर्ष पांच वर्ष, और वो भी बहुत पैसा खर्च करके ऊपर पड़ता है। कोई एक विद्या और वो भी पूरा नहीं धारण कर पाता, परंतु भगवान कृष्ण ने ये सारी विद्याएं सारी कला स्वतः सिद्ध है। और श्री बलराम जी ने अतः बोलो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। जीवों के ईश्वर है, मन सिद्धा मल ज्ञान है। उनका ज्ञान कभी भूलने वाला नहीं है, स्वतः सिद्ध है, परंतु अपने नित्य सिद्ध है ज्ञान को छिपा रहे थे दोनों मनुष्य चेष्टा द्वारा, मनुष्य लीला द्वारा नरे हितय गृह मानव छिपा रहे थे, मनुष्य लीला कर रहे और इसके लिए गुरुकुले वासम इच्छन पर दोनों इच्छा के हम पढ़ने जाएंगे, गुरुकुल में रहेंगे। तो उनकी इच्छा को जान कर बसदेव जी ने जिनका एडमिशन कराया उज्जैन में, उज्जैन में मुनि रहते थे, उनका नाम सांदीपनि मुनि था। समस्त वैदिक विद्याओं में पारंगत थे, काशी के थे। काशी से आकर के अवंतिका में उज्जैन में रहते थे। कृष्ण बलराम संदीपनि मुनि के यहाँ गुरुकुल में वास किए। सच्चे शिष्य की तरह गुरु की सेवा कर रहे थे। प्रसन्न कर रहे थे सेवा और पढ़ाई, गुरु की सेवा कर रहे थे और पढ़ रहे थे। केवल 64 दिन वास किए उज्जैन में, 2 महीना 4 दिन। और 64 दिन में ही 64 विद्या सीख गए। गुरु महाराज संदीपनी मुनि उनको विद्या पढ़ा रहे थे, तो 64 दिन में 64 विद्या पढ़ाए, एक एक दिन में संपूर्ण ज्ञान। उनकी सेवा से और स्वभाव से प्रसन्न होकर के, जो शुद्ध भाव के अनुसार की गई सेवा से प्रसन्न होकर संदीपनी गुरु जी ने प्रवासो देवगा मक्खी लाई, समस्त देवों का अध्ययन कराए। उपनिषदों के साथ वेद के सभी अंगों का अध्ययन कराए, सारहस्य धनुर्वेद ये क्षत्रिय है, कृष्ण भगवान कृष्ण ने गुरु ने उनको मंत्रों के साथ धनुर्वेद सिखाया। मंत्रों के साथ बाण चलाएगा, एक बाण को चलाने पर इससे हजारों बाण निकलते हैं। मंत्र से शक्ति है, उसको रहस्य कहते हैं। तो धनुर्वेद की शिक्षा तो दिए ही सारे रहस्य मंत्रों को बताए। परमाश्रम धर्म को सिखाए पढ़ाए, मतलब मनुष्य व्यक्ति आदि को पढ़ाए। इसके साथ न्याय पथ तर्क भी किया, न्याय पठन का एक अर्थ है मिलाप पढ़ा गया। सारा कानून आगे जिससे न्याय कर सके, और अनिच्छुकी विद्या, अनुइच्छा का अर्थ है ध्यान से किसी पक्ष पर विचार करना कि देह क्या है और देह के को ध्यान करने वाला आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है, उन पर भली भांति विचार करना, इसको अनिच्छुकी विद्या कहते हैं, ब्रह्म विद्या। इसके साथ राजनीति, राज कैसे चलाना चाहिए, ये 6 प्रकार की विद्या होती है राजनीति की। तो सर्वविधान राजनीति क्या, ये राजनीति सिखाए। कृष्ण भगवान समस्त नरों में श्रेष्ठ हैं, सभी विद्या के प्रवर्तक हैं। कल एक बार गुरु जी पढ़ते थे सखी मिलन मात हुआ, एक बार वे उच्चारण करते थे, एक बार के उच्चारण को ही सुन करके सब कुछ याद कर लिए। तो याद क्या करना था, तो उसने आप ही सब कुछ है याद, अपने आप निश्चित है। क्योंकि सर्व विद्या प्रवर्त कम कृष्ण बलराम ही समस्त विद्याओं के आवना है। फिर भी गुरु के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त की है, भगवान की लीला है, भगवान इसलिए विद्या सीख रहे हैं गुरु से कि मनुष्य जाति इस तरह से सीखे। ऐसा नहीं कि मैं भगवान हुआ था मैं किसी से पढ़ूंगा नहीं, ऐसे नहीं बनूंगा, तब तो सब अपने मन से भगवान बन जाएंगे। तो भगवान इस धर्म का परिवर्तन करना चाहते थे, गुरु स्वीकार करना चाहिए और पढ़ना चाहिए विद्या को। भगवान की अद्भुत लीला सबको जानते हैं और सबके सेव्य हैं, फिर भी गुरु की सेवा की और पढ़े। विद्यार्थी जीवन में किस प्रकार पढ़ना चाहिए इसको भगवान कृष्ण अपने आचरण से सिखा रहे हैं। अहो रात्रे चतुष्षष्ठ्य संयतो प्रवृत्ति करा। जब दोनों भाई पढ़ते थे उज्जैन में तो रात दिन पढ़ते रहते, उस समय बिजली नहीं थी लेकिन घी का दिया जला करके रात भर पढ़ते थे और पूरा दिन रात दिन पढ़ते थे, सब कुछ धारण कर लेते थे एक बार सुनने से ही, लेकिन पाठ करते रहते थे। रात को भी और दिन में चौसठ दिन रात अहोरात्र चतुष्षष्ठ्य मन को एकाग्र करके इंद्रियों को वश में करके और चौसठ दिन रात में चौसठ विद्या सीख रहे हैं। भगवान शिक्षा दे रहे हैं इस तरह से पढ़ना चाहिए। कभी कभी कोई व्यक्ति सोचता है कि अरे मैं पढ़ा हूँ क्या है पढ़ना है, वेद शास्त्र पर विश्वास नहीं करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं रामदेव मानस में किस किस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, वेद पर शास्त्र पर और राजा पर और स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और चाणक पंडित कहते हैं पुष्प के सुतया विद्या पर हस्त गतम धनम उत्पन्न देश कार्य विद्या में कब धनम। जो पुस्तक में विद्या है और दूसरे के हाथ में धन है तो कार्य उत्पन्न होने पर आवश्यकता पड़ने पर वह धन धन नहीं है और वो विद्या भी विद्या नहीं है जो ग्रंथ में है। जब कुछ बोलने को कहा जाएगा तो वो ग्रंथ में विद्या रहकर क्या करेगी, भूल जाएगा। ये कहते हैं ज्योति शास्त्र निपति बस ना है, ज्योति स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए कि हमारे बस में है, कब चित बदल जाएगा कोई ठीक नहीं है। और सांस के ऊपर भी ये विश्वास कर लो तो ये नहीं समझ में आता है कि अब सब कुछ याद है, काम लगने पर भूल जाता है। और राजा को कितना भी सेवा कीजिए लेकिन फिर तुरंत बदल जाता है। वोट के समय सबके पास हाथ जोड़ेगा, मांगेगा कि हम आपकी सेवा करेंगे, हमको एक बार सेवा का अवसर दीजिए। और जब चुन दिया जाता है तब सेवा करना तो दूर बात है और दूर भी नहीं दिखाता, बदल जाता है। यही स्वभाव है राजा से। कृष्ण जी कहते राखी नारी जगती उमाही ज्योति शास्त्र के प्रति बसना। स्त्री को पति देख रहा है कि मेरे साथ है, एक बेड पर है और हाथ से छू कर देख लिया है यहाँ है, तब भी विश्वास न करे कि वो है। राखिए नारी जगती उन्मय है, वो उसका आलिंगन किए है, देख रहा है कि है लेकिन उसको गायब ही समझे, विश्वास न करे। इसी तरह से शास्त्र शास्त्र पर विश्वास नहीं करे कि याद हो गया है। शास्त्र से चिंतित पूरी बुद्ध देखिए, शास्त्र को बार बार देखना चाहिए, पूरा याद है फिर भी पढ़ता रहे, पढ़ते रहना चाहिए। और राजा का मूड बार बार देखना चाहिए कि कैसा है, और भूत सुसेवित पूरी पूर्ण उल्लेख किए बार बार राज दरबार में जा करके उसको प्रसन्न करने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं सोचे थे कि बस प्रसन्न है, एक बार हो गया तब प्रसन्न है ही, तो बदल जाता है। तो भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं शास्त्र पढ़ने की, 64 दिन व्रत पढ़ते रहे, व्रत रहे थे। सर्व विद्या के जन्मदाता हैं, जो सब कुछ जान रहे फिर भी पढ़ रहे थे और अद्भुत तरीके से पढ़ रहे थे। रातों रात जम करके दिन भर पढ़ते थे, रात भर पढ़ते थे, तब इस तरह से विद्या ग्रहण की जाती है, तब जाकर के गीता का उपदेश की है, इस तरह से पढ़ाई की है। भगवान की लीलाओं के पीछे कुछ संकेत होता है, याद होने पर भी बारंबार पढ़ना चाहिए। भगवान को श्री बलराम जी को सब कुछ याद है, पर इस तरह पढ़ रहे हैं और खूब मेहनत करके पढ़ रहे हैं, नींद छोड़ करके, दिन में अन्य काम खेल कूद छोड़ करके पढ़ते हैं और रात में नींद छोड़ कर, पढ़ने में वे सोए नहीं, दो महीना सोए नहीं, मेहनत किए, परिश्रम किए, इस तरह से दोनों भाई पढ़ करके क्वालिफाइड बने। जब पढ़ाई पूरा कर लिए तब अंत में गुरु जी ने कहे, पहले का नियम था, गुरु से कहते थे विद्यार्थी हम कि हम आपको क्या सेवा करें, तो गुरु की इच्छा के अनुसार दक्षिणा देते थे। गुरु दक्षिणा से आजम छंदना मार सके पर महाराज करे थे कृष्ण बलराम पढ़ाई के बाद गुरु संगीतनी मुनि से जाकर के कहे राजदेव कर गुरु जी हम आपको क्या दक्षिणा दें। तो गुरु जी अपनी पत्नी से परामर्श किए, राय लिए, तो उनकी पत्नी ने देखा था कि इन दोनों विद्यार्थियों का अद्भुत प्रभाव है, अद्भुत स्मरण शक्ति है और अद्भुत तेज है, तब बोले कि हमारा पुत्र प्रभास में जब हम गए थे तो मर गया था, समुद्र में लहर आया और लहर बहा ले गया, सभी पनी मुनि गए थे द्वारका और प्रभास क्षेत्र भी गए, वहीं पर अपने पुत्र को सुला करते हैं तो जब वगैरह कर रहे होंगे तो समुद्र में लहर उठी होगी और उस लहर ने बच्चे को बहा दिया, समुद्र में डुबा दिया, उमर गए। और सौ का भी पता नहीं लगा। उनकी पत्नी ने कहा कि जो पुत्र मर गया है उसी को लाने के लिए कहिए, इनमें बहुत शक्ति है, इनका बहुत प्रभाव है, ये अवश्य ला देंगे। जयस्तम महिमानद्भुत संयुक्त राजन अतिमानुषम गति सम्मंत पत्निया च महानरे मृतम बालम प्रभासे दयांब भूव। प्रभास तीर्थ में उनका बच्चा मर गया था समुद्र में डूब कर, तो उसी मरे हुए बच्चे को लाने के लिए कृष्ण बलराम से कहे कि बेटा हमारा पुत्र मर गया था प्रभास क्षेत्र में, उसी को ला दो, वही दक्षिणा चाहता है। अद्भुत दक्षिणा भगवान से इस प्रकार की दक्षिणा मांगना कोई आश्चर्य नहीं है, सर्व समर्थ है। तो सर्वितनी मुनि अपने पत्नी से तो मंत्रणा करके कहीं वर मांगे, दक्षिणा मांगे। कृष्ण भगवान तुरंत अपनी गाड़ी पर रथ पर चढ़े, मथुरा से रथ आया होगा उस रथ पर चढ़े और उज्जैन से द्वारका गए और प्रभास क्षेत्र गए। कितना दूर है लेकिन प्रचार करके गए, प्रभास क्षेत्र में गए। तो समुद्र के किनारे पहुँच कर दोनों भाई थोड़ी देर तक बैठ के पूजा किए। समुद्र पूज्य है, जाकर बैठ कर ध्यान किए तो समुद्र मूर्तिमान प्रकट हो गया। इस बलराम से उठा है तो मैं आपकी क्या सेवा करूं? भगवान ने कहा, तमा भगवान आशु गुरु पुत्र प्रदीयता। भगवान ने तुरंत कहा कि जितना शीघ्र हमारे गुरु के पुत्र को ला दो। वह बालक तुम्हारे महान उर्मी से लहर से डुबा लिया गया है। तुम समुद्र को तुम बच्चे को डुबाए हो, अतः उसको लाओ। भगवान की लीला अद्भुत है। आज्ञा देते हैं जितना जल्दी हो लाओ हमारे गुरु पुत्र को। यो असव की हत्या ग्रस्त, जिसको तुमने यहाँ ग्रस्त लिया डुबा दी, महत्वपूर्ण मिला, महत्ता बहुत मिला, बहुत बड़ी बड़ा द्वारा जार भाषा द्वारा तुम उसको बहा ले रहे थे, लाओ। तो समुद्र बोला, हे देव, हे परम पूज्य, मैं वह आसमहन हूँ। हमने उस बच्चे का हरण नहीं किया, हमने नहीं चुबाया। हमारे भीतर समुद्र में पंचगण नाम का एक पशु रहता, दांत रहता है, दैत्य पंचगणों महान, एक महान पशु रहता है जिसका नाम पंचगण है। वो हमारे जल के भीतर रहता है, अंतर जल के रह। वही बहा ले गए बच्चे को और उसने बताया कि वह शंख के रूप में रहता है, वह असुर शंख के रूप में रहता है। तो वही ले गया है बच्चे को। इसको सुन करके भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ समुद्र में कूद गए, जल के भीतर जाकर घूमने लगे उस असुर को। पंच जन उसके पेट को फाड़ करके भगवान ने उस बच्चे को खोजने की कोशिश किया, लेकिन असुर को मारे उसका पेट फाड़ करके देखे तो उसमें बच्चा नहीं था। लेकिन बाहर आए तो उस शंख को लेते आए। उस पंच जन से उत्पन्न शंख था, इसीलिए भगवान के शंख को पंच जन में कहते हैं, पंच जन शंख। तो लेकर के भगवान आए, बच्चा तो नहीं मिला लेकिन शंख मिला। तो जब बच्चा वहाँ नहीं मिला तो भगवान उसके पास इसके बाद यम राजधानी स्वयंपुरी गए बलराम जी के साथ। और जब राज की नगरी स्वयंपुरी में जा करके शंख बजाए, तो शंख के ध्वनि को सुन करके प्रजा को अपने वश में रखने वाले जमराज जी आए, प्रकट हुए। और भगवान की बहुत बड़ी पूजा किए, महती सफर ना महान पूजा किए, भक्ति से बढ़ी हुई पूजा, भक्ति से पूजा कर। और चरणों में प्रणाम करके बोले, सबके हृदय की गति को जानने वाले कृष्ण से प्रणाम करके बोले, हे लीला मनुष्य, लीला करने के लिए आप मनुष्य विग्रह प्रकट किए, और हे विष्णु, आप सर्व व्यापक हैं, तो हम आप दोनों की क्या सेवा करें। जमराज के लोक में जमराज पूछ रहे हैं कृष्ण बलराम से कि हम आपकी क्या सेवा करें। भगवान ने कहा, गुरु पुत्रम यहाँ नीतम, गुरु पुत्र यहाँ लाया गया है, मेरी कर्म निबंध है, अपने कर्म के कारण जब कर्म बंधा हुआ गुरु पुत्र यहाँ पर लाया गया है। आ नया स्व महाराज, हे महाराज आप उसको लाइए, अनाश्व मच्छासन पुरस्कृत। मेरी आज्ञा है, मेरी आज्ञा को सुन करके आप उस मरे हुए गुरुपुत्र को लाइए, तो यहाँ आया है। जमराज जी ने कोई तर्क नहीं किया कि यह नहीं आया चाहे आया है, अब तो मर गया है, अब जीवित नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कहा। हे लीला मनुष्य, हे विश्व, हम आपकी क्या सेवा करें। तो भगवान ने कहा कि गुरु पुत्र यहाँ नीतम, गुरुपुत्र यहाँ आया है, अपने कर्म बंधन में फंस करके उसको लाइए, आप हमारे आदेश का आदर कीजिए और लाइए। तो भगवान की आज्ञा को सुन तब जमराज ने कहा तथा प्रभु। तो फिर सेनों का नीचे तो गुरुपुत्र को लाया, तो गुरुपुत्र देव का सेनों था, ताजा शरीर था और जीवित था, और जीवित का याद है कि वो बेहोश हो गया था। एसियों में रखा गया था, ऐसी बात नहीं, बिल्कुल शरीर ताजा था। वो आया तो उसको ले करके दोनों जदवंश शिरोमणि कृष्ण बलराम आ गए उज्जैन। और गुरु जी को दक्षिणा दी, उन्होंने जो मांगा था गुरु के आगे गुरुपुत्र को राह करके फिर कहे गुरु बेस्वय थी तुम उपेक्षा कर। और दोनों पूछे अब आपकी क्या सेवा करें, आपने संकोच करिए। यह गुरु दक्षिणा दी इस तरह से कहीं सुने हैं, कभी नहीं सुना है। कृष्ण भगवान है इसमें कोई संदेह नहीं है, तो किसी दूसरे व्यक्ति को कह के कोई ये भगवान है, पर इस कथन में 100% असत्य हो सकता है। परंतु भगवान कृष्ण के भगवत्ता के विषय में कोई संदेह नहीं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं एक परम ईश्वर है। तो गुरुकुल में पढ़ने गए तो पढ़ाई के समय में ही गुरु को दक्षिणा चुका करके उन्होंने अपनी अद्भुत शक्ति का परिचय किया। तो गुरु जी प्रसन्न हो गए और कृष्ण बलराम अपने घर मथुरा आने के लिए प्रस्तुत हुए। तब गुरु जी आशीर्वाद दे रहे हैं, दोनों पुनः गुरु जी के चरणों में प्रणाम किए और मथुरा लौटने के लिए जब तैयार हुए तो गुरु जी आशीर्वाद दे रहे हैं। उन्होंने कहा सैकड़ों विद्यार्थी पढ़ेंगे और पढ़े हैं भविष्य में भी पढ़ेंगे, लेकिन बेटा तुम दोनों के समान विद्यार्थी किसी को नहीं मिले होंगे और न मिलेंगे। तो मेरा धन्य भाग है, मैं धन्य हो गया कि तुम दोनों हमारे शिष्य बन। तीनों लोक में और तीनों काल में भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल में और तीनों लोक में ऐसा कृत हमने नहीं सुना जैसा तुम दोनों ने किया। मरे हुए गुरुपुत्र को जब लोक में जा करके लाभ देना, क्या कभी आप सुने हैं? केवल देश में के रिपोर्ट से पढ़ लेते हैं, किसी पुस्तक में कुछ ये भगवान है वो भगवान है, भगवान वो खास भगवान है, और भगवान कई हॉस्पिटलाइज मिलना कर रहे हैं, भगवान इसमें बीमार हो गए और उपचार चल रहा है। कृष्ण वास्तविक भगवान है, उनकी लीलाएं पढ़ने पर पता चलता है। तीनों लोक में ऐसी घटना नहीं हुई और तीनों काल में नहीं होगी। अनेक विद्यार्थी पढ़ते हैं, पढ़ेंगे और पढ़ चुके हैं, लेकिन ऐसी फीस कोई नहीं दी है। अद्भुत दक्षिणा भगवान की एक एक लीलाएं इस बात का प्रमाण है कि ये कृष्ण परम ईश्वर है। इनका जन्म लेना भी अद्भुत हुआ। जन्म के समय चार भुजा में प्रकट हुए और जन्म लिए और माता पिता की कथा सुनाने लगे कि आप पूर्व जन्म में तुलसी और सुतपा थे, उसके बाद दीपी और कश्यप बने, इसके बाद आप देवती वसुदेव के रूप में जन्म लिए। जन्म लेते ही कोई बच्चा अपने माता पिता की कुंडली बनाना चालू करेगा। लेकिन भगवान कृष्ण के विषय में सब लिखा गया है। देवकी वसुदेव को संतुलन देने लगे कि आप लोग तीन जन्मों में हमारे माता पिता बने हैं और मैं तीन जन्मों में आपका पुत्र बना है, इसी देह से, देह बदल करके नहीं है, इसी स्वरूप से आपका पुत्र बना है। और आप यदि डरते हैं तो मुझको नंद बाबा के यहाँ पहुँचा दीजिए। गुरु आशीर्वाद दे कि बेटा तुम जो विद्या पढ़े हो वह विद्या कभी भी न भूलो, ये हमेशा याद है। अब तुमने हमारे वंश की वृद्धि किया है, मेरे पुत्र को ला दिया तो तुम्हारा वंश बहुत बढ़ेगा। भगवान का विवाह 16108 हुआ और प्रत्येक स्त्री के 10 पुत्र हुए एक कन्या, इस तरह से बढ़ा। एक गुरु ने आशीर्वाद दिया था तुम्हारा स्वर्ग तुम्हारा ख्याल कुछ अद्भुत है। तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे, तुम्हारी विद्या का प्रकाश सारे जगत में रहेगा। जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक भगवत गीता रहेगी। अब तुम्हारी उज्ज्वल कृति धवल जस सारे जगत में फैल जाएगा। संदीपनी गुरु के आशीर्वाद से भगवान कृष्ण में सब आया, अपने आप सब कुछ है। पर गुरु जी ने बस आशीर्वाद दे रहे, इस प्रकार की गुरुदक्षिणा चुका करके दोनों भाई गुरु जी को बारंबार प्रणाम किए और उज्जैन से प्रस्थान किए। वसुदेव जी ने आवास भेजा था, ये निश्चित था कि इतने दिन के बाद आ जाएंगे और पता लगाते थे कि पढ़ाई पूरा कर लिए, पढ़ने में तेज है, उसी हिसाब से रथ भेज दिए थे। उस रथ पर दोनों सवार हुए। रथ की आवाज मेघ के समान थी और रथ की गति वायु के समान थी। बहुत तेज गति से चलने वाले घोड़े उसमें जुटे थे। उस रथ पर चढ़कर दोनों कृष्ण भगवान को दो महीने से मथुरावासी नहीं देखे थे, परंतु आज मथुरा के वास्तविक धन को, वास्तविक जीवन को देख रहे हैं। दोनों भाइयों को देखकर वहां के पशु पक्षी और मनुष्य सभी बहुत हर्षित हुए। विष्णु पुराण में लिखा गया है कि पक्षी ऐसे गा रहे थे, लगता था कि आनंद में कृष्ण भगवान कृष्ण गा रहे हैं। गौएं बिल्कुल प्रसन्न थे, घोड़े प्रसन्न थे और हंस थे और सब लोग नृत्य करके बाजे बजा करके कृष्ण बलराम का स्वागत किए। ऐसा लग रहा था कि कोई जैसे धनी व्यक्ति का धन नष्ट हो गया है परंतु फिर से वो धन पा जाए, उसको जैसी प्रसन्नता होगी वैसी प्रसन्नता मथुरा के लोगों को हो रही है, क्योंकि मथुरा का वास्तविक धन कृष्ण बलराम उनको पा करके वो बहुत प्रसन्न हुए। वो बहुत बड़ी पढ़ाई पढ़ करके लौटे हैं, इसलिए सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। कृष्ण बलराम मथुरा के लोगों के जीवन है, तो इनको पुनः पा करके वो बहुत प्रसन्न है। इसके बाद कथा है कि भगवान कृष्ण माता यशोदा की याद करके, मंद बाबा की याद करके, सखाओं की याद करके और गोपियों की याद करके उद्धव जी को ब्रज में भेज रहे हैं। कृष्ण बलराम को पा करके हम लोग यही आनंद से आनंद से परिपूर्ण मन की स्थिति में वह यदि संभव है तो बहुत भारी नृत्य के साथ इस बलराम का स्वागत करें गीत के साथ। इस बलराम की